बता रहे हैं वो अपने प्यारे बाप तथा आपके बाबा साकार बाबा उनके जीवन की झलक उसके बारे में ही हम आपसे कुछ बताएंगे। हालांकि मेरी छोटी आयु से लेके तो बाबा की जीवन को चाहे जब एक साकार व्यक्ति उस रूप में थे, बाद में परिवर्तन हुआ तो भी उस वक्त मेरी आयु जो थी इतनी ऊंची भाषा को ग्रहण करे मुश्किल समझा जाता था। जब बाबा ने देखा कि इस बच्चे का दिल दिमाग जो हमारी जीवन की कथा बाबा के जन्म के बाद ही शुरू हुई है, उस वक्त जबकि हमारे जन्म से दो पीढ़ियां पहले से लेकर हमारी आयु 16-17 साल, जब देखा कि नहीं कि बच्चे अब समझ सकते हैं कि हमारी जीवन का मुख्य पाठ क्या है, जब साधारण रूप में थे तो एक गृहस्थी परिवार था, मेरा जन्म हुआ तो बाबा बहुत धनवान थे। हालांकि छोटी बालक को धन क्या होता है और निर्धन क्या होता है उसका कुछ ज्यादा कुछ असर और कुछ नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो अलबेला रहता है, लेकिन जो मेरे को मालूम है और जो हमने देखा कि हमारे जन्म की तारीख बाबा के पास काफी धन था, बाबा का महिमा रजवाड़ों से था और खास करके नेपाल राज्य के अंदर वो रॉयल ज्वेलर बहुत बड़ा एक हस्ती मानी जाती थी। कभी भी कोई उनका ये कार्य वगैरह होता था तो बाबा को निमंत्रण में भी बुलाया करते थे और बड़े शान से, तो वहां का एक रस्म रवाज कुछ ऐसी रहती है कि स्टेटस दिया जाता है, जैसे महाराजा अगर जो कहीं बाहर जाए तो उनके पालकी उठाने वाले 16 होते और महारानी उनकी पालकी उठाने वाले 8 होते हैं, पालकी बेरर कंधे पर जो उठाते और प्राइम मिनिस्टर 4। बाबा का पालकी बेरर जो महारानी 8 उसी लेवल में होता था जो हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत ऊंची लेवल हो गई। और स्वाभाविक है कि उनका आना जाना भी कलकत्ता में जहां बाबा का कारोबार था हर साल आने जाने का होता था और बहुत करके बाबा के ही मेहमान उनका बंदोबस्त जो बाबा करते थे।
दादा बाबा जवहरी कहा ये सारा सीखा पहले बिजनेस शुरू करने से पहले?
मैंने पहले ही बताया कि एक साधारण परिवार था, बाबा की आयु 15 साल की थी तो बाबा का पिता हमारा दादा खूबचंद जिसका नाम था, बाबा को कलकत्ता भेजा और वो बड़ा अच्छा खासा जौहरी था। बाबा की टाइम पहले मुसाफरी पे 15 रुपए महीना पगार शुरू हुआ। जो हमारा दादा था वो स्कूल में हेड मास्टर था। जब 3 साल लंबा सफर था तो उसके लिए जो वर्किंग टर्म्स होते हैं वो 3 साल के होते हैं, तो 18 साल में वापस कलकत्ता से सिडनी आया और दादा ने उसका लगन करा दिया। बाबा 18 साल के थे जब उनका लगन हुआ, माताजी 9 साल की थी। दादा ने गोद में बिठा के उसका लगन, जो रस्म रिवाज होते हैं फेरे वगैरह देने के, ऐसे ही चला के 9 साल की थी किया। चलो बाबा का लगन हुआ, वापस कलकत्ता चले गए, वापस आए 3 साल के बाद, बाबा की आयु 21 साल, वापस गए। वैसे व्यवहार के अंदर बाबा की प्रगति होती गई, पहले मैनेजर बना, बाद में वर्किंग पार्टनर बना, 3-4 दफे गए और बाबा की आयु 28 साल थी तब परिवार के अंदर पहला मेल चाइल्ड, जो मेरा बड़ा भाई है 16 साल बड़ा, उसका जन्म हुआ। उसके बाद बाबा की जो विशेषता मुख्य रही इस 8-9 साल के अंदर, कि बिजनेस को इतना ऊंचाई पे लेके गया और बड़ी सच्चाई और वफादारी ईमानदारी से जिस तरीके से बाबा का लेन देन का सिलसिला चलता था, तब देखा कि लोभ और लालच की वजह से जो बड़े सेठ है जिनके पास बाबा काम करते थे, तो उसके अंदर सच्चाई और वफादारी की कमी होने की वजह से बाबा ने यह निर्णय लिया कि नहीं, अभी हम जो काम करेंगे अपना ही करेंगे। तो बाबा ने अपना काम कारोबार शुरू कर दिया। मैं तो अभी जन्म नहीं लिया था, ये सब जितनी भी बातें हैं ये मेरी मन की कल्पना नहीं है, लेकिन स्वयं बाप के मुख कमल से ये पाई गई है। और जैसे ही उन्होंने अपना कारोबार चालू किया तो ये सब जितने भी राज रजवाड़े वगैरह वगैरह, उदयपुर का, दरभंगा, जयपुर, छोटे मोटे और, उनसे ही लेन देन ज्यादा रही और वही बहुत कुछ था। 32 में मेरा जन्म 26 में हुआ है, तारीख 10-10-26, आप समझ गए, 10 अक्टूबर 1926। 32 में 2 कार्य हुआ, एक तो बैजेंद्र तो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमारी भाभी लगती है, तो वो घर में आई और बड़ी दादी कलकत्ता में, दादी निर्मल शांता, उसका लोकेश नाम पाला था, पाला ब्रजेंद्र का लौकिक नाम राधिका था। तो वो घर से गई और ब्रजेंद्र घर में आई। उस समय हम लोग के परिवार के अंदर भक्ति भावना का बहुत गहराई बहुत थी। बाबा हमें जब कहीं भी सफर पे जाते थे तो साथ में अंदर के जो वॉश पॉकेट जिसको कहते हैं, उसके अंदर विष्णु की मूर्ति हमेशा रखती। उस समय जब ब्रजेंद्र का घर में प्रवेश हुआ तो उन्होंने खाली एक बात का बाबा को विनती की कि ये ब्रजेंद्र आप महलों में पली हुई है, आप कोई अच्छा मकान तो कम से कम खरीद कर लो। बाबा तो कलकत्ता ही जा रहा करके रहते थे, तो वहां मकान है या नहीं है तो उसकी खास चिंता नहीं, तो हम लोग के बुजुर्गों का तो मकान था ही, लेकिन ऐसा शानदार मकान के लिए बाबा को खाली ब्रजेंद्र के घर वालों ने अपनी आशा प्रकट की, तो दोनों काम एक ही टाइम ही हो गए कि 1932 में ब्रजेंद्र भी घर पे आ गई और निर्मल शांता का भी लगन हो गया। और ऐसा ही मौका हुआ कि उसी समय बाबा ने ये जसोदा निवास, जिसका आप आगे चल के उसका क्या विशेषता है आपको जल्दी कुछ मालूम पड़ेगा, तो क्योंकि परसों जब हम बैठे थे तो रमेश भाई इस बात का जिक्र किया कि हम लोग ने आंध्रा हैदराबाद वहां हम लोग ने जगह वगैरह लिया है, प्लॉट वगैरह बहुत बड़ा मिला है, और उसको जब हैदराबाद है तो हम लोग जहां से ये बुनियाद शुरू हुआ है उसी के याद में हम लोग उसको इस तरीके से बनाएंगे, तो याद जहां से ये शुरू हुआ है, जहां से बाबा में ये परिवर्तन हुआ है जीवन के अंदर, ताकि वो यादगार होते रहे। हम मेरे को तो उसका पूरा नक्शा अपने दिल दिमाग में याद है, तो बोला कि संभव तो हो सकता है कि हम लोग ऐसा ही जसोदा निवास हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो बाबा को वैराग्य वृत्ति में लाने के लिए ज्यादा जो फोर्सेस है, इंस्पायरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारी माता यशोदा थी। आपने नाम सुना होगा, फिर उसका ध्यान 61 में हो गया तो बहुत आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं होगा, क्योंकि जब आपने साकार बाबा को ही नहीं देखा है तो यशोदा मैया का तो पहले ही यहां से लेन देन का हिसाब करके वो अपना धाम चली गई। कोई बाबा को हमेशा कहती रहती थी कि अभी धन की क्या अपने पास कमी है, आप थोड़ा भक्ति भावना में अपना समय ज्यादा दो, क्योंकि क्या है कि भक्ति भावना के अंदर अंतःकरण बड़ा शुद्ध रहता है, भावनाएं बहुत ऊंची रहती है, और प्रेम और त्याग और ये सब जितना भी अच्छे गुण है वो बहुत अच्छे और निर्मल रहते हैं। तो भक्ति भावना की वजह से, और वो भी जब समाधि में बैठी थी तो दो दो घंटे वो फिर शिव जी की पूजा रही थी, उनका एड्रेस शिव जी था, और दो घंटा बैठे उसको मालूम नहीं पड़ता। उसके बाद एक तो ये इन्फ्लुएंस, दूसरा बाबा का जो स्वयं कुछ प्रवेशता का अनुभव कर रहे थे लेकिन इसको स्पष्ट नहीं करने पाए, इसके लिए उन्होंने बहुत गुरु कई किए, लेकिन हर गुरु के अंदर कोई ना कोई कमी महसूस करके वो असफल रहे। आखिर में हम लोग के परिवार के अंदर एक बहुत मानी हुई व्यक्ति है जो एक सूफी संत था, हम लोग की बरादरी का था और हम लोग कम्युनिटी में सब लोग उनको अच्छी तरह से बहुत मानते थे, बहुत दानी था, और बाबा का उससे बुजुर्ग थे, बड़े थे, बहुत आदर करते थे। तो बाबा ने ये सोचा कि जब तक ये है तब तक हम व्यवहार में रहेंगे।
क्या परिवर्तन आएगा,
हालांकि जीवन के अंदर जो ये परिवर्तन आया, मैं इतना मैच्योर नहीं था कि ये जो जीवन के अंदर पलट हुई इसको मैं ग्रहण कर सकूं। ये जो पलट का जो 34 to 37 पीरियड, 8 or 9 साल का बच्चा इतनी ऊंची भाषा को ग्रहण नहीं कर सकेगा। अध्यात्म के ख्याल से अगर जो देखे तो ये बहुत ऊंची भाषा हम लोग इसको मानेंगे कि एक साधारण तन के अंदर परमात्मा का प्रवेश हो हमारी आयु के अंदर, ये बड़ा कठिन समझती। ये तो समझ मेरे को तब आई, उसके बाद भी बाबा ने मेरे को बहुत दफा टोका भी, शिक्षा भी दी कि बाबा को बहुत पहचानते हैं और तुम अभी तक बाबा को पहचान नहीं पाए, क्योंकि मेरी अवस्था वो थी और लगन वो थी जो एक बाप के लिए होती है। बाबा का परिवार से थोड़ा उपरांत रहते थे, क्योंकि ये जो ओम मंडली का जो शुरू हुआ था, बाबा ने शुरू किया था, नक्शा बैठ के बनाना, ये करना वो करना, और के बाद हम लोग चले गए कश्मीर और ज्यादा समय हम लोग पहलगाम में रहे थे। 5-6 महीने का प्रोग्राम था। उस समय भी बाबा का जो परिवार से जो एक किस्म का उपरांत जीवन डिटैचमेंट, वो हम लोग ने सब बच्चों ने पाया, लेकिन अर्थ उसका हम लोग अंतर नहीं निकाल सके। हो सकता है कि माता यशोदा ने कुछ अनुभव किया हो, लेकिन जब प्रश्न मेरे से आता है तो मैं समझता मैं नहीं था जो बाबा को मैं उस रूप में देख सकूं और परख सकूं। जब मैं अपनी आयु में आया, जब बाबा ने देखा कि नहीं, अभी बच्चे के अंदर दिल दिमाग बुद्धि वगैरह से ये सब 2-3 पीढ़ियों से लेकर जो भी बाबा का अनुभव था बाबा ने समझाया, तब से मेरा इस विषय में काफी ध्यान गया और बाबा से जो मेरी लेन देन मोरालेस एक बेटे से काफी ज्यादा, एक मोम ममत या कुछ भी समझो कि मैं ये फील करता था, लेकिन तो ये सिर्फ मेरा बाप नहीं है लेकिन मेरा भगवान भी है। उस समय भी संशय तो था ही नहीं, पहली बात को ये तो फीलिंग्स की बात होती है। आप ये कह सकते हैं कि आपका विश्वास इस व्यक्ति के अंदर, आपके और बाबा के बीच में 2 साल के बाद हुआ या 4 साल के बाद, लेकिन हम तो ये भाषा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो शंका जानते ही नहीं थे और उसकी कोई तारीख वगैरह तो मुकर्रर नहीं थी कि भाई हमने फलाने दिन मेरे को ये साक्षात्कार हुआ कि नहीं, हमारा बाप ब्रह्मा बाप है। मैंने तो कोई ऐसा साक्षात्कार वगैरह भी नहीं किया, कि तो जो कुछ आपको अभी बता रहा हूं कि तो वही कुछ है जो बाबा के मुख कमल से हमने पाया है। जब उन्होंने देखा तो नहीं, ये अधिकारी है और उसको जो भी जिस तरीके से त्यौहार से लेके आज दिन तक जो भी कुछ है, आप रफर समझा या कुछ भी समझा, मेरे को सब कुछ बता दिया उन्होंने।
ईश्वर माता के बारे में बताया शुरू से,
छोटेपन में तो मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चे थे, परिवार था, हम लोग 5 बच्चे थे, बड़ा भाई निर्मल शांता, फुटू दादी, मेरा नंबर, छोटी बहन। आप ये पूछेंगे कि बाबा और आपके बीच में किस तरीके था, तो मैं तो आपको बताऊं, आप शायद ये भी पूछ रहे कि बाबा किस तरीके से बर्ताव करता था, अगर जो कुछ सही तरीके से नहीं चलते। मैंने तो एक दफा मार भी खाई है। बात यह थी कि हम लोग के परिवार के अंदर धन संपत्ति सब कुछ था, सब लोग का जो खान पीन वगैरह वो ज्यादा करके सिल्वर में ही होता था। और खास करके जब बाबा कलकत्ता से सिंध में आते थे तो सिल्वर में ही होता था। और कभी अगर जो कुछ ज्यादा महफिल वगैरह या कोई भी ऐसा कुछ अकेला आता था तो चैना कराकरी वगैरह निकालते थे। अब छोटे बच्चे होते हैं तो देखते हैं कि भाई ये कबाड़ के अंदर क्या है क्या नहीं है, वो एक आदत रहती है बच्चों को। तो मैंने ऐसे ही खोला, देखा कि उसके अंदर कुछ आवाज है, हाथ डाला तो मेरे को 1 रुपया मिला उस सिल्वर का साइन। तो मैंने जेब में डाल दिया। छोटी आयु थी, 4 साल की आयु थी, बाबा भी कलकत्ते से आए हुए थे। तो ऐसे ही सोच विचार है कि एक सिक्का जो मैंने अपने हाफ पैंट के अंदर डाल दिया है, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे यार दोस्त है उनको कैसा मालूम पड़े कि भाई हमारे पास भी धन है। तो मैं उसका एक सिक्के का पैसा जाके छुट्टा कराया, रुपए के अंदर 64 पैसा मिलता है। तो देखा कि वो वजन उसका है, मदर की नजर पड़ी, यशोदा मैया की नजर पड़ी कि भाई ये लड्डू के वापस आई, इसकी चड्डी में पड़ा है। हाथ डाला तो देखा कि पैसे निकले। बाबा से बात छेड़ा। दूसरे दिन सुबह श्रवण को बढ़ाया, राम जी नंगा कर उसको। मैं रोना चालू कर दिया, नंगा किया और जो बगीचे को पानी देता है रबड़ का होस पाइप वो उठाया और सटकने शुरू कर दिया। मैंने बोला, मैं तो खाली रोता ही रहा, लेकिन उससे पहले मैंने बोला कि चोरी मैंने नहीं किया, मेरे को मिला है। बोला ऐसा मिलता है क्या? मैं तो ये अंदाज लगाया कि फाइनल लक्की पर, मैंने जेब में डाल दिया। लेकिन बाबा तो ये जमाने, बाबा ने समझा कि चोरी किया। क्या कुछ ये कारण ऐसा बन गया जो हमारे लिए जीवन भर एक हमारा सबक हो गया कि चोरी किसी हालत में अपने से होनी नहीं है। तो ये भी एक सावधानी का एक हम लोग को एक मिल गया, सबक मिल गया। तो जीवन के अंदर चोरी एक पाप होता है। आमतौर बाबा का बहुत प्यार रहता था छोटेपन में, लेकिन जैसा परिवर्तन हुआ तो बाबा उपरांत थे और सबको एक ही नजर से ज्यादा करके देख, मतलब एक ही नजर से देखते थे। और कोई खास फैसिलिटीज वगैरह कोई नहीं थी। आप क्या कह रहे थे
यशोदा माता के बारे में? शुरू से भक्ति करते थे बाबा के साथ भोजन।
यशोदा माता तो हम लोग के परिवार के अंदर एक मिसाल ऐसा है, उसने कभी भी बाबा से बैठ के भोजन कभी नहीं किया। सिस्टम ये थी कि हम लोग बाबा से बैठते थे और हम लोग भोजन खाते थे। बाद में जब बाबा भोजन करके खत्म करते थे तो हर सब्जी से, मतलब जो खाने के अंदर भोजन के अंदर जो भी प्रकार का वस्तु होती थी वो छोड़ जाते थे और माता जी वहां से ही शुरू करती थी अपना भोजन। और जो मैंने आपको बताया कि जो इंस्पायरेशन था वो भी माता जी का ही था, क्योंकि इसकी लगन शिव से थी, शिव भगवान से थी। भक्ति मार्ग के अंदर हम लोग अभी कहते हैं कि शिव परमात्मा, लेकिन आमतौर शिव भगवान हम लोग कहते हैं और उसकी लगन उसके साथ ही थी। इसी भंडारे में जहां आप ब्रह्मा भोजन बनाते हैं और हम अपना, जो एक व्यक्ति थी जो राजाओं और महाराजाओं और रानियों के साथ उठती और बैठती थी, वो इस भंडारे में अपना संपूर्ण सरेंडर होके ये सब कार्य करने वाली थी। नॉट इवन अ हेड बट अंडर समबडी हु एक्चुअली, अगर जो हम लोग कॉमन रूप से देखें, वॉज नो बडी। इस ज्ञान में यशोदा माता इतना हम समझते हैं कि आगे थी। जिस पति को भोजन खिला के उसी भोजन से अपना भोजन शुरू करना, परिवार के अंदर 6 बच्चे आए, माता बनी और वो सरेंडर हुई और बाबा को पति और पत्नी के रिश्ते को छोड़कर बाबा के रूप में उन्होंने देखा। संभव है? कर सकता है कोई? ये उसकी विशेषता थी। बहुत सेंटरों पे गई, सर्विस की, वो उसकी विशेषता थी। और कुछ बात याद?
कैसे शरीर छोड़ रहे? कब? कहा?
मालूम पड़ा कि यशोदा मैया की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बॉम्बे में ही था। बॉम्बे में बुलाया उनको, बड़ी बहन निर्मल शांता उसको भी बुलाया, तो मालूम पड़ा कि इसको थोड़ा कैंसर की तकलीफ है। फिर भी डॉक्टरों ने बोला कि कम से कम 10 महीना तो परेशान करेगा। तो हॉस्पिटल में एडमिट किया उनको, 3-4 दिन टेस्ट वगैरह जो भी कुछ करने का होता है, मेडिकल वगैरह जो भी करने का होता किया। तो अच्छे डॉक्टर मंगाए, बुलाया, उन्होंने प्रोग्राम दिया कि इसका कल माइनर ऑपरेशन करे, ताकि वो जो सेप्टिक फ्लूइड वगैरह होती है, मेडिकल को मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूं, तो उसका एक छोटा ऑपरेशन कर दे। सुबह के 5 बजे थे, तो दादी ने मुझे शांता को बोला कि वो भी हॉस्पिटल में ही रही थी, उसको बोला कि सामने बैठो और मेरे को दृष्टि दियो। मां बेटी एक दो के सामने 1.5 घंटा गया, नर्स आई, क्योंकि ऑपरेशन पहले तो स्पंज वगैरह साफ सुफ वगैरह के लिए आते हैं, तो यशोदा मैया ने सामने ही उसको हाथ ऐसा इशारा दिया, वो वापस चली गई। 1/2 घंटे के बाद आंख बंद कर दिया और बड़ी बहन निर्मल शांता ने उसको लेटाया और जाके बाप के पास, बाबा के पास पहुंची। कोई खास तकलीफ नहीं हुई, ऐसे ही शांत हो गई।
विश्व किशोर बाबू, बाबा उसको राइट हैंड बोलते हैं।
दादा विश्व किशोर एक बड़ा अमूल्य रत्न है बाबा का, जिसका योगदान हम तो कभी भुला नहीं सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि बाबा के परिवार का तो एक हिस्सा ही है और एक बड़ा मुख्य हिस्सा रहा, चाहे बाबा के बड़े भाई का बेटा था, लेकिन जैसे ही बाबा ने उनको लिखा, जैसे ही एंटी ओम मंडली का जो घमसान शुरू हुआ, जिसके कारण हम लोग हैदराबाद से छोड़ के कराची चले गए थे और बाबा के ऊपर कई प्रकार के केसेस वगैरह परेशान करने के लिए ये आंदोलन चला था, जिसका आपने काफी अच्छी तरह से अपने बुक्स वगैरह में से पूरी जानकारी आपको मिली है, तब बाबा ने उनको लिखा कि बाबा ने ही तुम्हारे को बनाया है, आज बाबा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। पत्र पहुंचते ही अपना सब कारोबार अपने भाई को दिया और आके सीधा सरेंडर हो गया। अब उसकी तो अगर जो कहानी करने को जाए तो 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसका बहुत जो विचित्र कार्य जो उन्होंने किए हैं वो गायन योग्य है। उसके लिए हम लोग के पास इतना समय नहीं है।
सिर्फ पांडव और कैसे लिए वो बता दीजिए।
ऐसे प्रकार के नागराज भाई बहुत से विचित्र रूप से उन्होंने अपना योगदान दिया है। ये पांडव भवन की अगर जो आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको बताऊं कि बाबा ने उसको पर अपनी मन की आशा बताई कि ये पोकरान हाउस के नाम से माना जाता था, तो ये हम लोग खरीद ले। बाबा तो सरकाल दृष्टि था, आज को भी जानते थे, वर्तमान समय तो उनके नजर के सामने था, अब भविष्य को भी जानते थे। उनकी इच्छा ये हुई कि हम लोग ये खरीद ले। हम लोग 650 रुपया साल का किराया इसका भरते थे। जो टोटल एरिया है वो 1.75 एकड़ है, 1.25 एकड़। उस समय अबू के जो भी किराए वगैरह कोई जगह होती थी वो साल के हिसाब से होती थी, कोई भाव नहीं था। तभी बाबा को संकल्प उठा और दादा को बोला कि देखो इसका सौदा कर लो। निश्चय बुद्धि की बात बताता हूँ कि कितना निश्चय बुद्धि और अपना स्वयं एक सफलता का जो उनको वरदान भी मिला था और उसका बल भी था, तो पॉजिटिव थिंकिंग उसने 10,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया ठाकुर के नाम पे, जिसके नाम पे जगह है। यहां से माउंट अबू, वहां से एक विटनेस लिया, अजमेर गया, वहां से एडवोकेट उठाया और जहां ये ठाकुर रहते थे यहां से अबाउट 250 to 300 miles अवे, तो वहां पहुंच गया, मिला उससे, जो भी हिसाब किताब देने करने का था दिया। ऐसी वैसे बात की ये ठाकुर साहब ये पोकरण हाउस से आपको कुछ लाभ मिलता है, आमदनी है, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। बुजुर्ग की प्रॉपर्टी पड़ी है। तो दादा ने उसको पूरा उसका पोस्टमार्टम करके उसको बताया कि देखिए हम आपको 650 रुपए देते हैं, उसमें से आप अबू म्यूनिसिपल टैक्स भरते हैं, वाटर टैक्स भरते हैं, फोगी है, फोगी का मतलब संभालने वाला जो बगीचा वगैरह माली वगैरह, उसको आप पगार देते हैं 35 की 45 रुपया। मेरे हिसाब से आपके जेब से कम 100-150 रुपया जरूर जाता होगा। तो उसने सोचा कि हिसाब से जो बराबर है तो जो बोलता है तो ठीक बोलता है, बोले करे क्या, उसको खाली पड़ी रहती है, कोई लेने वाला तो है ही नहीं, पर हम लोग ले लेते हैं। अगर जो 650 के हिसाब से अगर जो आपको 650 से ऊपर ही हाथ में मिल जाए तो मैं समझता हूँ सौदा अच्छा रहेगा। मतलब उसको कई तरीके से उनको कन्विंस करके उसने भी हिसाब लगाया कि ये जो बात बोलता है वो सही बोलता है, और उसको बोला कि 18,000 रुपये हम आपको इसका दे देंगे। 10,000 रुपये का ड्राफ्ट सामने दे दिया और कागजात पहले ही उन्होंने बना दिया था कि ये सौदा तो होने का ही है, क्योंकि बाबा का संकल्प उठा है तो निष्फल हो ये असंभव है। तो इसके लिए उन्होंने सब पूरा बंदोबस्त यहां से करके विटनेस यहां का लिया, वकील अजमेर से किया और सारे मतलब 250-300 मील यहां से जाके उनको कन्विंस किया। वो जो सेल डीड वगैरह डॉक्यूमेंट जो भी बनाने का है वो बनाया हुआ था, उसके ऊपर उसका सिग्नेचर लिया, 10,000 रुपया पहला एज अ टोकन मनी, बैलेंस 8,000 रुपये अपने भेजने का। उसने ये सौदा किया, हो गया, दादा वापस चले गए।
अब छोटे गांव के अंदर तो कलेक्टर होता है या मजिस्ट्रेट होता है या जो भी बड़े आदमी होते हैं, चार पांच यार दोस्त तो होते ही है, रात को बैठे अपना छोटी मोटी महफिल लगाई। अगर मैंने पोकरन हाउस बेच दिया, स्वागत है तो उसके यार दोस्त पूछे कि भाई कितने में भेजा, बोला 18,000 रुपया। मैं मेरे को पूरा समझाया कि मैं तो मूर्ख था, हमारे जेब से हर साल 100-200 रुपया जाता ही था, 18,000 रुपया हमने सौदा हो गया। तो मैंने साइन करके सब खत्म कर दिया, पैसा भी मिल गया, बाकी आने का है। उसके दोस्त ने बोला है कि तू क्या सुबह को भी चढ़ाता है क्या, 50,000 की प्रॉपर्टी तुमने 18,000 रुपये में बेच दी। मेरे को क्या मालूम, मेरे को तो बताया कि मेरे जेब से 100-200 रुपये जाता ही है साल। अब उस मतलब आपस में जो यार दोस्त है उसमें एक मजिस्ट्रेट भी था, भाई क्या कर सकते हैं। उसने अपने एग्रीमेंट उसको बताई, बोला कि यार जिस तरीके से एग्रीमेंट बनी है अगर तुम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा ना तो जीतने का चांस नहीं है, मैं खाली आप तुम्हारी एक मदद कर रहा हूँ ऐसे दोस्ती के नाते कि मैं इसको रख रहा हूँ, आता है जाता है, तारीख देता जाऊंगा, तंग हो जाएगा, कुछ हो सके तो हो सकता है। 3.5 साल तक दादा आते हैं जाते हैं, तारीख दे दे भाई ठीक है 2 महीने के बाद आना, 2 महीने के बाद आना, ऐसे 3.5 साल निकाल दिए। आखिर में केस का फैसला तो होना ही चाहिए ना, तो उसने सजेस्ट किया कि आउट ऑफ कोर्ट आपस में मिलकर कुछ फैसला कर दो। दादा ने बोला हम तो तैयार है। तो ठाकुर ने बोला कि 4,000 रुपया मेरे को ऊपर से और भी दे दो। दादा ने बोला 3,000 रुपया ठीक है, सौदा हुआ। वो भी एग्रीमेंट बनी कि भाई फुल एंड फाइनल पेमेंट 3,000 रुपया देके मामला खत्म हो गया। उसने ड्राफ्ट डिपॉजिट नहीं किया था, ड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग था। अब दैट इज अपने को तो कोई इसके अंदर एडवांटेज नहीं हुआ, वरना तो उसको लाभ मिला, वो तो ऐसे ही सस्पेंडेड अमाउंट था, किसी को लाभ नहीं। तो बाद में बोला कि ठीक है अभी सब कुछ हो गया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, आप हमारे को 3,000 रुपये और देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अभी 4 साल का जो भाड़ा है वो, बोला अभी तो आपने साइन किया है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 3,000 रुपये लेता हूं और ये मामला फैसला हो गया, फिर आप दोबारा ये कैसे मांगते हो। उसने बोला भाई माफ करना, आप जैसे व्यक्ति से बहुत मुश्किल है। तो ये जो मधुबन का बहुत बाबा का प्यारा, यहाँ स्वयं हम लोग का प्यारा बाबा जिस कुटिया में रहते थे उसकी निजाकत, उसकी शांति का अनुभव बहुत सी व्यक्तियां आज करते हैं, वो इस छोटी रकम में बाबा ने बच्चों के लिए ली थी। बातें तो बताते जाए कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग को समय बहुत कम पड़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि मेरे को इमर्ज भी होनी चाहिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मैं इशारा उनको दे देता हूं तो भाई ये बातें हैं, लेकिन कहते कहते कहां का कहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, एक बात शुरू किया दूसरी तक पहुंच जाते हैं। तो वैसे तो बाबा ने तो हमारे को भंडार अपने जीवन का सब बता दिया है जब मैं अपनी आयु में आया। अब उसके अंदर तो क्या है कि मेरा अपना वो भी आ जाएगा, क्योंकि आप भी हमारे से ये प्रश्न करेंगे तो आपके जीवन का भी रहस्य क्या है, इतना प्यार अपने प्यारे बाबा के ऊपर, किस कारण आप मधुबन से अलग हुए, चाहे टेम्पररी हुए? टेम्पररी का मतलब ये रहा, कुछ ऐसी घटनाएं जो सब आपको मालूम है, हम लोग का बेगड़ी पार था, माताएं अच्छे अच्छे परिवार से, किसी ने अपना पति छोड़ा, किसी ने अपना बेटे छोड़े, किसी ने अपनी बेटियां छोड़ी, कोई बच्चे आए माँ बाप को छोड़ के आए, बाबा की शरण में आए, और उनके लिए हमको मालूम नहीं कल इनके लिए भोजन पकेगा या नहीं पकेगा, तो ये मन की संकल्प, और मैं 23 साल का, तो संकल्प तो मेरे को भी आएगा, तो मेरा मन भी बहुत चला। कम 23 साल में हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे भी कुछ ऐसी मजबूरियां थी। एक तो छोटी आयु के अंदर हम लोग सब साथ में रहे, जो आज हम लोग की आदरणीय दादियां हैं, हम लोग की एज बराबर की है, छोटी अवस्था में वो भी कोई 9 साल के, कोई 10 साल के, आज वो 70, 72, 75, 80 तक पहुंच गई है, और छोटी आयु में बाबा के व्यवहार कश्मीर चले गए 6 महीने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई कहां से होगी? तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हो सकी। यहां की समस्या हल निकालने के लिए 23 साल का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमने भी अपने मन की जितनी भी बातें थी बाबा से की, उसका भी बहुत एक अच्छा रहस्य है। बाबा ने किस तरीके से मेरे को कहा, बच्चे कार्मिक हिसाब तो चुकाना ही है, अनादि आत्मा है, बहुत लंबी यात्रा की है, अंतिम जन्म है, कितने कर्म किए हैं, हिसाब तो चुकाना ही है, तो जब ऐसा समय आता है तो कोई न कोई बहाना, मन का संकल्प वो भी एक बहाना ही होता है, खैर उसका तो चुकाने का है, बाबा ने भी चुकाया है, तो किस हालात से हम अलग हुए और किस दौर से हम लोग साथ में भी रहे, ये भी एक बहुत लंबी कहानी। देखो कल दादी जी शायद आ रही है, उसके बाद हम लोग निर्णय करेंगे।